نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي البر والمرء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد کسی آدمی کو اپنا سٹیٹس معلوم نہ ہو تو آپ خود سوچیں اس کی حالت کیا ہوگی. مثال کے طور پر کسی ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے کوئی آدمی, اس کو اپنے سٹیٹس کا علم نہیں ہے کہ میں کس سٹیٹ پہ کام کر رہا ہوں, کیا کام میرا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو بیچارہ ایک ڈسٹرب آدمی ہوگا, اس کو تو کچھ سمجھ نہیں لگے گی. بھائی ایک ہمارا بھی ایک سٹیٹس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور سٹیٹس کو اس حالت کو جو ہے ہماری واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی. اور یہ بیسک چیز ہے, تو مجھے پتہ ہی نہیں میں ہوں کیا, تو آگے کام کیسے چلے گا. کسی آفس میں اس آدمی کو پتہ ہی نہیں میری پوزیشن کیا ہے, اس نے کام کیا کرنا ہے پھر, ہے نا. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں اپنا اسٹیٹس, جو کہ بتایا بھی گیا ہے, اس کا مطلب بتایا گیا ہے ہم یقین ہی نہیں کرتے. جب یقین بھی کرتے ہیں تو جو یقین کرتا ہے پھر وہ نظر بھی تو آتا ہے ویسے, کہ بھائی اس یقین آ گیا کہ میں یہ ہوں. ایک آدمی کی جواب دیا ہے کہ بھائی آپ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ اس پہ اس کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے, آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے. تو جب اس کو جواب کا یقین آ گیا تو آپ مارکیٹنگ کرتے دیکھیں گے, اس کام کرتے دیکھیں گے, تو لگتا یہ ہے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے اس اسٹیٹس کا جو ہمیں بتایا گیا. جس کو یقین ہی نہ ہو تو وہ کام کیا کرے گا, جو کام نہیں کرے گا تو اس کو تنخواہ کیا ملنی, مجھے پتا ہے. تو آج تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے, ہم ہیں کیا, تاکہ تو پتہ تو چلے اس دنیا میں کیوں بھائی کام کیا ہوا ہے, کس لگے ہیں. ابھی کیا عجیب معاملہ ہے, عجیب عجیب لوگ ہیں بھی بھائی, پتہ ہے کچھ نہیں. ہمارے کیا فرشتے بھی ہنستے ہمارے ان, جیسے پاگل آدمی ہوگا. ہمارا اسٹیٹس جو دیا اللہ پاک نے, اس کے کوئی آثار نظر نہیں زندگی پہ آتے, اور اس کے آثار فوراً نظر آتے ہیں. ایسا اسٹیٹس ہے کہ فوراً نظر آتے ہیں دنیا کے اندر. اس کیا اسٹیٹس ہے, ہمیں بتایا گیا کہ آپ ایک مسافر ہیں. کیا بتایا ہے یا نہیں بتایا, ہی نہیں بتایا, پکا بتایا. اچھا جی ہمیں بتایا تو مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ مسافر نظر آتے ہیں, ایمان سے بتائیں. میں اپنے عمر زیادہ مسافر نہیں, کبھی نہیں. بھائی کوئی مسافر ہو تو بیچارہ وہ سامان باندھتا نظر آئے گا, سامان رکھتا نظر آئے گا, کوئی ٹکٹ کا فکر ہوگا, کوئی فلائٹ کا فکر ہوگا, فلائٹ نمبر اس کے پاس ہوگا, غم ہوگا کہ میری فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. بڑا اسٹریٹ فارورڈ کوشچن ہے. تو ہم کیسے مسافر ہیں مجھے پتہ کچھ نہیں, ہماری فلائٹ نمبر کون سا ہے, ہماری جرنی کون سی ہے, ہمارا جانا کدھر ہے, ہمارے پاس ٹکٹ کون سا ہے. تو آج سب سے پہلے تو یہ تو ہم سمجھ لیں اپنے آپ کو, بھائی ہم ایک مسافر ہیں. سمجھیں گے نہیں بہت ہی پاگل ہیں. حقیقت نفس اور شیطان انسان کو دیکھیں, کتنا بڑا اسٹارٹ نے دھوکہ دے دیا اسے, نہیں تو آئی کچھ نہیں تیرے کو اسٹیٹس. جب آدمی مسافر سمجھتے ہی نہیں تو مسافر کی سفر کی تیاری اس کی کیا ہوگی, और जिस आदमी की सफर की तैयारी नहीं है तो पहुंचेगा क्या, उसकी मंजिल कौन सी होगी? तो भाई बड़े खतरे में फंसे हैं वो लोग, बड़ी सीधी बात है दोस्त। आज से कम से कम आदमी अपने आप मुसाफिर तो समझे। मुसाफिर जो है वो तो मुकीम तो होता ही नहीं है, अल्लाह ने दुनिया में मुसाफिर के लिए नमाज आदि कर दी, बेकसर पढ़ो, कितनी सूरत दी है। और हम हैं मुसाफिर, तो हम तो जनाब मुकीमों से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, इतना माल जमा कर रहे हैं कि छतों तक माल चला गया, लेकिन अभी कहते हैं नहीं यार कम है, कल क्या होगा, कल कुछ हो गया तो। जो यकीन करते हैं मुसाफिर सुभान अल्लाह, ऐसे बुजुर्ग दुनिया है, उनको हम बुजुर्ग इसलिए कहते हैं, हालांकि हर आदमी के साथ ही होना चाहिए, एक ना उन्हीं चीज नजर आती है ना तो हम उसको कहते हैं ये बड़ा बुजुर्ग है, हालांकि ये नहीं बात, उसने यकीन कर लिया इस बात को, वो अकलमंद आदमी है, वो समझ गया उनका अंदाज क्या होता था सुभान अल्लाह। शाम होती, शाम हुई है, बकरी चला कर आए हैं, घर में बच्चे भी हैं, रूखी सूखी खाई, दिया बुझाया, अपनी अली से कहा कि भाई कुछ चीज़ बाकी है घर में? उसने है तो कुछ नहीं, जो टुकड़े थे रोटी के हमने खा लिया, और तो घर में कुछ नहीं, और सोच कर कुछ नहीं, बस मटके के अंदर पानी है। कहते ये भी क्यों है, इसको भी गिरा दे, और कुछ चीज़? कहते वाले नहीं। कहते जिस रब ने आज पानी दिया तो कल भी पानी देगा, मैं इस हालत में क्यों सोच कि जब मौत की तरफ मैं जा रहा हूँ कि मैं इसका भी हिसाब दूंगा, तू जो पानी छोड़ के आया उसका हिसाब दे मुझे। ऐसी ज़बरदस्त जगह है मुसाफिर, शर्म से अपनी गर्दनों को हम झुका लें तो कम है खुदा की कसम, इतनी शर्म का मुकाम है ना हमारे लिए, मैं सोचने वाली बात है कि पानी पानी हो जाए हम लोग, क्या किस 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 तरह हम जमीन पर चल रहे हैं, क्या हमारा मिशन है, क्या हमारी डेस्टिनेशन है। हाथ कीड़े की भी कोई जिंदगी होती है कि पांव से बच जाता है, हमारी मौत का जो इस मुसाफिर होने का तो सबूत ऐसा है कि आदमी हैरान हो जाता है कि वो आदमी कहां से आया, पर्दे से गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं वो कहां जा रहा है, किधर गया, गायब कहां हो गया, क्यों? हम तो ऐसे मुसाफिर हैं कि हमारी जो फ्लाइट है ना ये ट्रेन, वो डायरेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं हमारे पास कि हम थोड़े से आराम करें, हमारे तो ब्रेक जर्नी है, ब्रेक जर्नी समझते हैं ना? नहीं मैंने आप गए कि भाई ये हमने इंडिया जाना है, तो उसको कहेगा पहले इंडिया जहाज नहीं जाएगा, पहले दुबई रुकेगा, दुबई के बाद फिर जाकर कतर रुकेगा, ये ब्रेक जर्नी होगी ना, हमारे तो ब्रेक जर्नी है, सीधी फ्लाइट नहीं है, और सीधी फ्लाइट तो चलो 7-8 घंटे पहुंच जाते हैं आराम से, हमारे पास तो वो टिकट भी नहीं दिया अल्लाह ने हमें, तो अब बताएं ब्रेक जर्नी कितना इंसान को अलर्ट होना पड़ता है, हम उतरेंगे सामान अपने उतारेंगे फिर उसके बाद दूसरा फ्लाइट पकड़ेंगे, हमें तो गमी कोई नहीं, फिक्र कोई नहीं, पक्के मुकीम हैं हम। जो आदमी अपने आप पक्का मुकीम समझे, पक्का मुसाफिर, उससे बड़ा कोई जहर मुसाफिर कभी डेस्टिनेशन पहुंच सकता है ऐसा मुसाफिर मुझे बताया, पहुंच सकता कभी देखे ऐसा आदमी एयरपोर्ट पे खड़ा करा, नहीं जी मैं इसी एयरपोर्ट तो नहीं, मैं इसी एयरपोर्ट पर रहना, दो बजे मैं तो जाने नहीं आगे, मेरे तो पक्का है, कोई नहीं देखेंगे, भागता ऐसा चढ़ते आदमी चढ़ जाते हैं। कौन सा इंसान होगा जिसके घर से गायब नहीं हुए लोग, मुझे पता है कोई है आदमी ऐसा? कहाँ है दादा परदादा बीवी बच्चों, कितने कोई घर होगा ही नहीं ऐसा जिसमें इंसान गायब ना हो, जिनकी गोदों में आप खेले ना हो, जिन बीवी के आगोश में आप लेटे ना हो, जिन बापों के आपके साथ माल ना खाए हों, जिनके आपने जिनके साथ बातें ना की हों, जिस माँ के साथ आपने मजाक ना किए हों, उन बहनों के साथ जिनके साथ खेले ना हो, उन दोस्तों के साथ जिनकी आपकी यारी ना हो, थे वो लोग कहाँ गए? तो कम से कम आज इतना तो अपने आप अकल पैदा कर लें कि हम क्या हैं, ऊँचा बोले क्या है, तो मुसाफिर वाली जिंदगी तो हो फिर दोस्त, झाड़ू फेरे अपने घरों में, झाड़ू फेरे, किसी चीज पे यकीन ना करें, ना ये गोली बचाएगी ना ब्लड प्रेशर की गोली बचाएगी, ना कैंसर की गोली बचाएगी, ना कोई डॉक्टर बचाएगा। माँ की तैमदारी करते करते माँ को एक दिन कब्रिस्तान उतार नहीं है, बाप की तैमदारी करते करते उसको कब्रिस्तान उतार नहीं है, चाचा की करते करते उतार नहीं है, मामा की करते करते उतार नहीं है। कुछ नक्श तो खींच सकते आप किसी इंसान को, इसी तरह जाता हमने भी जाना ही, हमें गुजर जाना। आगे बात समझ, तो ब्रेक जर्नी क्या है हमारी? अभी तो ये जब यहां से हम हिलते हैं तो एक सफर हमारे सामने है ना, स्टेशन पर खड़े हैं। अगर ये जो जर्नी हमारी ब्रेक होगी कहां पर होती है पता है आप? वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो भी कहां जाते हैं, कहां जाते हैं मौलाना, किधर जाते हैं? कब्र में, कब्र डालो, कब्र खोदो, कब्र खोदो, ये नारा लग जाते हैं। वो गिर तो घर पर जाता है भाई, अपने शाम को आता था घर जाता था, बिस्तर पर लेटता था, अपनी दुकान पे जाता, वो सब भूल गए, कब्र डालो, कब्र डालो, कब्र डालो, बॉडी होगी बॉडी हो, नाम भूल गया, सब कुछ भूल गया। अल्लाह अकबर, किसने कब्र खोद दी, कोई वहां चला गया, उसको कोई नहाने वाला आ गया। किसको कर रहा हूँ मैं? अपनी बीवी को कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को कर रहा हूँ, मैं अपने बाप को कर रहा हूँ। यहाँ खुशी से करो, इन्नल्लाह तला कहते हैं, मेरे माल था, मेरी तरफ मुसाफिर था, वापिस आ रहा है, इसमें घबराने क्या बात है, क्यों रोते है तुम? मकरूह मौत कहती है कि जिस पे तू रो रहा है तेरी बारी आने वाली है, तू भी तो ट्रेन पे, तूने भी सफर करना है, तेरी ब्रेक जर्नी। अब उसकी ब्रेक जर्नी कहाँ होगी हमारी, कहाँ होगी? डेस्टिनेशन नहीं है ये, डेस्टिनेशन नहीं है और मंजिल नहीं है, पर ब्लैक जर्नी पे जा रहे हैं। अल्लाह यहाँ से तो लोगों ने फारिग कर दिया और निला दुरू के ये कब्र में डाला, डब्बे में डाला, बड़ी हकीकत वाली बात है आपको बता, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अब जो मुसाफिर जिस ब्रेक जर्नी पे गुजारा गया है, जिसने अपने मुसाफिर नहीं समझा, उसके पास कोई ज्यादा राह नहीं हो सकता, ज्यादा राह समझते हैं समान नहीं हो सकता। जब मैं वो हाजी नहीं समझता और हज पे उसको ले गए, कोई इतना आराम होगा उसके पास ना, उसके पास कोई चीज़ होगी तो हज उसने दिया। अब ये सोच रहे हैं अगर इस तरह आदमी जा रहे हैं कि जिस डेस्टिनेशन पे ब्रेक जर्नी में वो जहाँ उन्होंने करनी है, मंजिल भी नहीं अभी, और उस ब्रेक जर्नी तक उनके पास सामान नहीं है, कुछ भी कुछ सामान नहीं रख सके उस कब्र के लिए जहाँ उन्होंने ब्रेक जर्नी करनी है। ये एक वक्त मुअय्यन था, यहाँ पर फ्लाइट इतने बजे आनी है, बस वो आ गई फ्लाइट हमारी, अल्लाह की टाइम कौन सी, ये घड़ी वाले नहीं है, बल्कि क्या है 50-60 उम्र, 10 साल उम्र, ये उम्र वाली ये घड़ी चलती है हमारी, टिक टिक बैक चल रही है हमारी, ऐसे चल रही है। जहाँ वो बैक जीरो पे आएगी ना, यहाँ तक इसको फिट किया है, अलार्म जिस लगाते हैं ना, इस पे आके ये सुई ठक होएगी, चाहे सड़क पे हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे बीमार हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, इस पे कोई बस जहाँ उसकी जो सुई जहाँ खकते, इस पे सुई वापिस आ जाएगी, इस पे इसका जो अलार्म बोझ देगा इसका ठक, और जो यहाँ जमा किया था सबको, तो उसका हुक्म क्या है कि बड़ा बदतमीज इंसान था, जमा करता रहा, निकालो तकियों से चीजों से, तकसीम करो लोगों में उसको, सुभान अल्लाह। अब उसकी तकसीम एक ऐसा चाचा आ जाता है जिससे वो दुश्मनी करता था, उसको लायक नहीं करता था मामे, उसको पसंद नहीं था, उसका हक होगा कि उसको पैसे पहुंचेंगे, नहीं दोगे तो कब्र में उसके जूते पड़ेंगे, उसका हक तुम तुम नहीं पहुंचे। ये हमारा हाल है, जिस मामे चाचे बहन भाई को हम पैसे कभी देते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे उसकी तरह, उससे नफरत करते थे, क्यों कभी इसकी मदद नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, जो छोड़ गया तो हुक्म आया कि विरासत है उसकी, तू कौन था ना देने वाला, इतने सोना निकाल कर उसको दो, और खुश ही रहेगा, छत बड़ा दान छुटी मुझे विरासत मिली तो सही ना चीज। देखें आप ये हमारी जिंदगी, तो ब्रेक जर्नी नेक्स्ट हमारी क्या होती है, जहनी जिंदगी में सुकून रहा आदमी, अब इसमें क्या, इस जो मुसाफिर हैं हमें कर रहे हैं लगे, हमें कुछ सिस्टम का पता नहीं, तो किसको सुकून है, किसी डेस्टिनी ये कर ले कि मेरा घर ही सही हो जाए, मेरी बच्चे सही हो जाए, कोई कहता है मेरी बीवी खुश मुझसे रहे, कोई कहता है मेरा बाप, हम तो हर एक को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, वक्त गुजार रहे हैं, या इसको किस तरह राजी कर लें, या उसको किस तरह खुश कर लें, इसको कैसे हो जाए, या मेरा फलां किस तरह हो जाएगा, मेरा जॉब का हो जाएगा, हम तो इन्हीं चक्कर में पड़े हुए अपने वक्त को गुजार रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि सुबह से लेकर शाम तक हम एक मुसाफिर हैं, हमें अब उसकी जाने वाली जगह पर अपना कोई ज्यादा राह अपने कुछ सामान को तैयार करना चाहिए सारा सा। अब हम भी चले गए कब्र में, अब कब्र की मंजिल तो नहीं है आपकी, वहां क्या होगा तो अल्लाह जाने वहां क्या होने वाला है, अल्लाह बिलाल है, कुछ पता नहीं कब्र का हमें क्या होगा, क्या हालात में। दुनिया का हमें नहीं पता था, दुनिया का पता था आपको कि आप यहाँ आएंगे रहने के, किस तरह पता था कि बड़ोच में रहने वाला बोल्टन में आकर मस्जिद बना लेगा, किसी को पता है सूरत में रहने वाला एक मदरसा कायम कर देगा, क्या पता था किसी को पाकिस्तान के गांव में रहने वाला एक ऊंची बिल्डिंग यहाँ बना लेगा, पता था किसी। तब पैदा हुए आप सोच भी नहीं सकता था कोई कि भाई ये इस जगह पहुंच जाएगा, सात समुद्र दूर निकल जाएगा, लंदन पहुंच जाएगा, कुछ पता था। ऐसी इस दुनिया का नहीं पता जहां बहुत फन्ने खाबर बने बैठे हैं, हर स्विच हमारे पास है, टेलीफोन जी साइंस कख का नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता कि हमें छोड़ना कब है, कुछ ये सब खिलौने हैं जो लाने में दिए हैं, हम इसमें खुश हो जा रहे हैं, बड़ी तरक्की हो गई जी टेक्नोलॉजी की, फला ये हो गया और ये हो गया, ऐसी की तैसी तुझे अपना पता ही कोई नहीं, तुम जाना कब है, तेरी फ्लाइट कब आ गई और तेरा टिकट कब एक्सपायर होगा, पर मैं गलत करूँ सही करूँ, सही बताऊँ, दिल में लग रही मेरी बात कि नहीं लग रही, लग रही तो दिल में लग रही तो फिर तो माशाल्लाह माननी चाहिए ना, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये मंजिल आ गई जाना तो मेरे भाई वो भी सुन लो वहाँ क्या होगा, वहाँ तो जो कुछ पता चला है पता ही आपको, जब मामला होगा हमारे साथ उस मंजिल पे, यहाँ से जलील होकर निकलेंगे तो उस मंजिल पर जलील, क्योंकि ज़्यादा राह नहीं होगा, वहाँ भी टिक जाएंगे जाके, लोग तो डिब्बे में बंद करके चले गए ना काबे की तरफ मुँह करके, है ना जी, कलमे पढ़ते आराम से मिट्टी डाल के, किसी खाने चलने लगे, कोई पुलाव पकड़ने लगे, कोई कुछ होने लगा, आज हम बैठेंगे आज फला होगा आज ये इस आले स्वभाव होगा, वहाँ उसका रगड़ा निकल रहा होगा उस मुसाफिर का, मतलब कैसी रात होगी मेरी आपकी, गरीब औरत का इंतकाल हुआ तो खामिद आया बेचारा माँ का, उसके बेचारे का इंतकाल हुआ कल, तो हम जब निकले ईशा के बाद लेट हुए थे हम तो लेट निकलते जाते हुआ, हम खड़ा था बेचारा गले में रहते यहाँ रोने लगा कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, मुँह से जो उसका लफ्ज़ निकला हजरत साहब कितनी रात भर गई है फैल गई है, मेरी माँ मेरे पास नहीं है, मुझसे जुदा भी हो गई, और मैं सोचता हूँ कि आज खबर की पहली रात है उसकी, अल्लाह मैं हिल गया कि यार देखो मेरा क्या हाल होगा जब मैं मेरे साथ ये वक्त आएगा, खबर की पहली रात होगी जब दुनिया मस्त होगी उस रात में, अपने कोई तमाशे लग रहे होंगे, टी वी चल रहे होंगे, गाने चल रहे होंगे, रिश्तेदार आ रहे होंगे, खाने खा रहे होंगे, लेकिन एक अजीज को आपने कब्र की सुरात में फेंक दिया, उसके साथ क्या हाल होगा, अल्लाह अकबर क्या होगा मेरा आपका, वो क्या रोने लगा, मैंने भी रोना शुरू कर दिया, मैं कह यार तुमने तो मुझे हिला दिया भाई, हम तो ऐसे मुसाफिर हैं, हमारे पास उस रात के लिए कुछ भी नहीं है, एक दिया भी नहीं है जिस कब्र की अंधेरी रात मुझे होश आ जाएगी, यही होंगे आप बिल्कुल इसी तरह, फिर जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तब्दील हो जाते हैं आप, तो ब्रेक जर्नी पे वही आदमी होते हैं आप, किसी ने कुछ सामान पकड़ा होता है अपने अपने यकीन के मुताबिक, उनके पास चीज़ें जमा हुई होती हैं कि हम मुसाफिर हैं ये ले जाएं फला ले जाएं, अपने अपने ले लिए होते हैं ना, कुछ जहर होते हैं कुछ भी नहीं पकड़ा होता, कहते हैं यार क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ ये होगा बिल्कुल होश आ जाएंगे, जैसी मिट्टी डाली आप कदम की आवाज़ तय मुर्दा, यहाँ तक तो बताई ना चीज़ें अल्लाह के नबी ने, बाकी बहुत बहुत सी चीज़ें हैं बताई गई, इससे तो बाकी चीज़ें बेकार ना समझा करें, मुर्दों को दफन करके वो तो बेचारे मुंतजिर होते हैं, चीखते भी हैं बोलते भी हैं, इंसानों के साथ सारे जानवर सब सुनते हैं उनकी बातों, एवरीबॉडी, मैं बातें कर रहा हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि अभी भी हमें यकीन बातों का यकीन नहीं आ रहा कि मैं मुसाफिर हूँ मेरे साथ ही होने वाला, मैं सही बता रहा हूँ, हजारों लोग सुन रहे सब मेरी बात को, लेकिन मैं सही समझता हूँ कि हमें इधर से हम इधर से निकाल दें वही जिंदगी रहेगी हमारी, कभी सोच भी नहीं सकते इस बात को, हम ध्यान भी नहीं दे सकते इतनी बड़ी हकीकत को, कभी बहुत मुश्किल होता है ऐसी बातें सुन के इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाए, बहुत ही बड़ा खुशकिस्मत होगा होता इंसान, यही तो एक चीज है सबसे बड़ी, इसका नाम तो धोखा है, अरे भाई वो देखो आदमी रो रहा है मेरे सामने कंधा रखे कि मैं कल उसके साथ कुर्सी पर बैठा था, मेरी माँ थी, 100 साल तक मैं उसके साथ रहूँ, 100 साल उम्र थी उसकी वालदा की, माँ माँ होती है बेशक 130 साल की तब भी मर जाए तो माँ है, आप 80 साल के जाएं अपनी माँ के सामने, 90 साल के जाएं, उसने आपको क्या कहना, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा पूत, वो कहे ये तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे की बात कर रही है, और माथा चूम रही है, प्यार गर्दन चूम रही है, उसको वो बच्चा ही नजर आ रहा है। बच्चे हंसते थे पहले, आज खुद हमारे साथ ही हो रहा है कि हमें जवान जवान औलाद अपनी बच्चे नजर आती है, आती नहीं, मुंह से ये निकलता पुत्र है बेटा, ये नहीं करते है ना। क्या अल्लाह के कारनामे, देखो इंसान कितना बड़ा, यहां खुद सोच बूढ़ा हो गया, कमर झुकी है मां सामने, वो मेरा बेटा आ गया, मेरा चांद आ गया ना, मैं फला आ गया, मैं ये आ गया, वो छोटे बच्चे से करते थे, वो अभी वही बात गुफ्तगू अभी हो रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो भाई दूसरी फेज में जब इंसान पहुंचता है कब्र में, तो वहां क्या होता है आदमी के साथ, बस वही है तैयारी, जो माल जितना माल ज्यादा माल होगा हमारे पास उसके मुताबिक जो बताया गया है कि भाई फलां जगह जाने आपने उसके लिए ऐसे कपड़े चाहिए, आपने एक संदूक भर लिया जाना, आपने पोल्स पे संदूक भर लिया अपने बनियानों से, निगरों से, क्यों जी पहनेंगे पोल्स पे, कोई पहन सकता सर्दी का, मुझे बताए जाने आपने रेगिस्तान में आपने ले लिए कंबल और जना कोट सारा भर लिया, जब वहां पहुंचे तो पहनने के लिए कुछ, हम तो कोट लाए थे, हम तो कंबल लाए थे, ये तो सामान नीचे देगा कब्र में, अल्लाह तो कहेगा सामान तो वही था जो मैंने कहा था, इसका इस ब्रेक जर्नी पर जब उतरोगे इस मुल्क के अंदर, क्योंकि मुल्क चेंज हो गया तुम्हारा, अगर तुम लंदन में, आप दुबई में उतरे हो और दुबई में तुम्हारा कितना क्या है पता नहीं, तो क्या तुम्हारे दुबई के मुताबिक तुम्हारे कपड़े हैं, लेकिन जो सही मुसाफिर होगा वो समझिएगा मैं दुबई में जा रहा हूँ, मैंने कुछ 3 महीने रहना है, 4 महीने रहना है, कैसे कपड़े लेंगे हम, फिर कोट लेंगे, गर्म गर्म चीजें खरीदेंगे, नहीं, हमें पता है कब्र में आग है, शोले हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, अजदहे हैं, कब्र की तंगिये हैं, तुम के अंधेरे हैं, जालों को एक चिराग तो ले जाओ अपने साथ, एक चिराग तो ले जाओ जिंदगी में, एक दिया ही ले जाओ जो आकर रोशन कर दे हमारी कब्र को, सुभानअल्लाह। सारी जिंदगी अल्लाह ने हमें दी होती 70-80 साल, हम एक लाइट छोटी सी साथ लेके नहीं जा सकते वहां, हम वो चीजें लेके जाते हैं सारी कब्र में, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता इंसान को वहां पे उसके साथ। मेरी बातें समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे, नहीं आ रही समझ में, दिल में उतर रहे हैं दोस्त, सच बताना पीछे है या नहीं, हमें रियलाइज कर रहे हैं या नहीं कर, ठीक है आपने नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन अल्लाह ठीक है तू कपड़े लेकर आया है, तूने पैक कर ली है, लेकिन क्या उस तरीके का तू कपड़ा लेकर आया जो है पहने का, ठीक है तूने नमाजें पढ़ ली है, क्या तू वो नमाजें पढ़ी हैं जो यहां तुझे काम आएंगी, बताओ, क्या तूने वो हराम खारी छोड़ी है, जो वो जो तू हराम खारी साथ लेके आएगा वही तो अजदा बनना, वही तो सूद है जो तेरा बिच्छू बनेगा, वही तो सूद है जो तेरे लिए आग बन जाएगी कब्र के अंदर। कितने प्रोटेक्शन किए मैंने, कौन सा सामान लेके गया, झूठ वाला सारा, रिया वाली चीजें, फ्रॉड वाली चीजें, फ्रॉड वाली इबादतें, दिखावे वाली चीजें, अपने मन पसंद की इबादतें करनी, मन पसंद के कुरान पढ़ने, अपनी मर्जी भी अपनी इबादत को लेकर चले, झूठ भी रखना है नमाज भी, सूद भी घना है हज भी करना है, लोगों का माल भी चबाना है, कर्जे भी इनके ले लेके खाते रहने हैं, देने भी नहीं हमने कर्जे, और क्या करना है हमने सुनाना, उम्र भी बुक कराने, ये कोई जिंदगी है मुझे बताए, गलत सोशल सिक्योरिटी के माल भी खाने हैं, मुल्क के टैक्स भी खाने हैं, सब हराम कारी करनी है, और उसके साथ हमें क्या करना है, जिक्र भी करना है, वापस सुनो तो भी अमल करने है हमने, शिक्र भी बनानी है, ये काम आएगा भाई काम, मुझे बताए ईमान से बता है, और कमाल अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत देखे कि मरने से पहले 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 जब भी तू इस चीज के लिए तौबा कर लेगा तू बिल्कुल तैयार मुसाफिर होगा उसके लिए, जहां तक नहीं जाता, अब फिर रमजान आ रहे ऐसे कैसे बेवकूफ है हम सब, अब रमजान के इंतजार हो रहे हैं, बीच में सब निकाल दिया, रजब भी निकाल दिया, शाबान भी निकाल दिया, अब रमजान की तैयारी हो रही है, रमजान आ रहा है जनाब, बड़ा मजा आएगा, बस अल्लाह तक हमें रमजान तक पहुंचा दे, वो बंदे के पुत्र ये कहो अल्लाह ताला मुझे सही सलामत कब्र तक पहुंचा दे, उसकी बात करो, रमजान तो बहुत दूर है या नहीं है। ये रमजानों के तमाशे देखे कैसे लगते हैं परिजन वाले, मस्जिद में जगह भी नहीं होगी, ये तो कोई मजहब नहीं है। मुसलमान तो हर वक्त मुसाफिर है, और मुसाफिर को फ्लाइट का पता कोई नहीं, हमें तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उसे एक चांस है, रमजान मिल गया तो मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मिला, हर घड़ी मोमिन की रमजान है, बोलो सुभान अल्लाह। सुबह से लेके रात तक हमारी लैलतुल कद्र है। ये क्या मोमिन, ये क्या ईमान वाला जो लेके रमजानों के इंतजार में बैठा है, नहीं है क्या वही खुदा नहीं है जो आज भी तहज्जुद के वक्त आसमान दुनिया पे आता है और आवाजें मारता है, है कोई मुझसे मांगने वाला? वही खुदा है जो रमजान की रातों में आकर यही बात करता है। उधर क्यों जोर लगाते हो, उधर क्यों ओ ओ ओ जो दुआएं शुरू करते हैं, और जो फ्राडबाजी खाम ड्रामेबाजी चलती है, जो बुला बुला के कह के लोगों को, ये तरीके तो नहीं है। इसके मतलब तो बाकी दिन तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला तो है ही नहीं, बस रमजान में जाहिर होते हैं, बाकायदा आवाजें लगती हैं। हमारे हजरत फरमाते थे सुभान अल्लाह कि काश किसी के कान हो, मैं अपने कानों से आवाज सुनता हूँ उस वक्त की फजर की, अल्लाह अल्लाह सुनते हैं। जो हक के हर चीज जो कुरान हदीस मुतरी है, हक चीज हक है दोस्तों। थोड़े सूरे होते हैं, नहीं जी अब तो टाइम छोड़ा हो गया, क्या तहज्जुद में पढ़ना, अब तो ये हो गया तो फला करो, अगला सफर आने ही वाला है दोस्तों, ब्रेक जर्नी नहीं आने वाली है, वहां पता लग जाएगा क्या हिसाब था तुम्हारा, क्या फरार था, कैसे बड़े बड़े अजाब मुंतजर हैं हमारे। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे, हाँ खुल जाए हमारी। आज इसे पूरा जोर लगा देना चाहिए कि हम हर शब को शब कदर समझें, हर दिन को यौम रमजान समझें, सुभान अल्लाह। हर दिन को हम अपने आप को हाजी की तरह पाक समझें, हाजी होता है अरफात के अंदर, मीना के अंदर, सुभान अल्लाह। हर वक्त हर नमाज के वक्त जिस वक्त मस्जिद तक भागते जाएं तो ये समझें कि मैं काबे का तवाफ करने जा रहा हूं, तो जिंदगी है मोमिन। उसी तरह बन के घर से चलेंगे, भाई घर है, टांगे मारते आएंगे मस्जिद में, सीधा आगे वजू शुरू कर देंगे। अल्लाह के बंदे घर से वजू करके चलो, बेहतरीन कपड़े पहन के चलो, खुशबू लगा के चलो, अल्लाह का जिक्र करते चलो, ऐसे समझो कि मैं तवाफ के लिए जा रहा हूं, भक्त जा रहा हूं। सफेद कपड़े पहनो कि मैंने इस वक्त हराम बन लिया, और जैसे जिस मुकद्दस तरीके के साथ आप तवाफ की तरफ जाते थे, क्या झूठ बोलेंगे, क्या किसी बदगोई करेंगे आप उस वक्त तवाफ के वक्त, क्या आप सोचेंगे वो हराम काम करें? यही है मोमिन का हर लम्हा मस्जिद की तरफ जाते हुए एक तवाफ है, मैं तो ये समझता हूं। मुताफ की तरफ आ रहे हैं, कोई ये नहीं कि मस्जिद फलाह में जा रहे हैं, मस्जिद जिक्र नहीं, एक मोमिन की शान तो हर वक्त इतना अटैच रहे अपने आप को अल्लाह की जात से, इतना रखे कि जो इनामात उसने चंद घड़ियों के लिए रखे हैं वो हर लम्हे समेटता चला जाए उससे। कौन है जो हर वक्त खर्च कर सकता है मुझे बताएं, आज मुझे 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैं नहीं जा सका मेरे पर, लेकिन मोमिन हूं तो मैं ऐसा मोमिन हूं कि 8 साल जो मुझे दूर रखा गया खाना काबो से मुताफ से, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं एक लम्हा में मैं दूर ना हूं उससे, कोई फिक्र ना हो, हर वक्त खाना काबे के गिरतर चक्कर काटता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का स्टाइल बदलना चाहिए इंसान, टिकट जरूर लेने, फ्रॉड जरूर करने, लोगों को जरूर मुबारकें लेनी है, शोएं मारनी है, ये करनी है, ताल्लुक रख लो अपने अल्लाह के साथ, ऐसा ताल्लुक रखो कि हर वक्त सुभान अल्लाह जब सुने जाओ तो खाना काबे के झोंके आपके साथ लगे, हवाओं के झोंके आते नजर आए, वह खुशबू नजर आए, जैसे खाना काबे की तवाफ करते आते हैं ना खुशबू, खास जो मशहूर है कहाँ, वो तवाफ नाकों के अंदर है, इतना रच बच जाओ अल्लाह की याद के अंदर, अल्लाह के साथ इतना मुंसलिक हो जाओ कि आपको ना काबा दूर नजर आए ना मदीना दूर नजर आए। बहुत आसान, सारी सारी जिंदगी लोगों ने ऐसे गुजारी, हजरत फजल कुरैशी रहमतुल्लाह नहीं जा सके, हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह हज नहीं कर सके, किन किन बुजुर्गों के नाम मैं आपको बताऊं, लेकिन ना कर सके, लेकिन किसी लम्हे खाना काबे से दूर भी नहीं रह सके, दूर भी नहीं, हसरत नहीं थी उनको किसी के साथ। गलत करूं सही दोस्त, मेरी बात को समझ आ रही, सही बताए, इसको समझ आ रही है, हाथ तो खड़ा करे, शाबाश। देखो ऐसे बनना है हाजी, मैंने नहीं बनना, बनना है आज से बन जाओ, क्यों जाते हो बाजार समझते हो बाजार जाओ, नहीं बाजार तो है ही नहीं कुछ हमारे सामने, लोग नजर ही ना आए आप, सुबह पानी से पिए आप अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको लगे मैं आबे जमजम पी रहा हूँ, उसी दुआ के साथ पी। वैसे भी जद्दे के पानी पी रहे हैं आप, कौन सा आबे जमजम पीते हैं बोतलों के अंदर जो आप लेके आते हैं। तो मेरे भाई ये है जिंदगी इंसान की, कब्र जाना ही नहीं जाना हमने, हैं बिल्कुल जाना है। अब जनाब माँ तो मुसाफिर बने, फिर तो कुछ होगा, अब अभी ब्रेक जर्नी है, वो जर्नी नहीं है, वहां कितनी डेस्टिनेशन हमारी, अब पता नहीं फ्लाइट बताई जाएगी कि अब ये फ्लाइट, जिस तरह यहां में पता नहीं था वहां भी पता नहीं, वहां पता नहीं, वहां एकदम कुछ धमाका होगा इसी तरीके से जैसे यहां धमाका मौत का हुआ, वहां अजीब हालात होंगे, तो आदमी फिर वहां से अगले सफर की तरफ शुरू हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह, उस तरफ शुरू हो जाएगा, कहां निकला है वो, उस जगह से निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगली फ्लाइट के लिए, वो फ्लाइट कौन सी है, हशर का मैदान। बोले सुभान अल्लाह, है या नहीं है, उसमें मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे नहीं जाएंगे, तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे, आप जाएंगे कौन जो कहेंगे नहीं जाऊंगा, क्या सफर की तैयारी है ना, दुनिया की यहाँ की भी हमें तैयारी चाहिए थी ना, ना यहाँ हमने तैयारी की, ना ब्रेक जर्नी आया हमारे कब्र ना उसकी तैयारी हो, वो तीसरा तो बड़ा सख्त मामला है उसके लिए, तो क्या सामान है हमारे पास, कौन सा बैग उठा कौन से लेंगे, कब्र से निकलेंगे, जब कब्र से निकलेंगे तो हाइट चेंज हो चुकी होगी, जैसे दुनिया से निकले कपड़े उतार लिए गए, ऐसे हुआ था ना, सामान छीन लिया गया, सब कुछ छीन छाड़ के अपने ही दोस्तों ने मुंह पे कपड़े डाल के बांध करके डब्बा ऊपर डाल के कपड़ा ड्रण करके मिट्टी के अंदर डाला, किसको, बादशाह, बादशाह जो देखते थे इतना बड़ा बादशाह जनाब सऊदी अरब का, अंदर जरा ड्रण मिट्टी के कौन गया, ये पिता शानशाह थे मलकू थे कहाँ हो गए, पता शाह खालिद धड़ मिट्टी के अंदर चला गया, अल्लाह कैसे कैसे लोग मिट्टी जमीन खा गई, सुभान अल्लाह, मुझे बताया मिट्टी का ढेर नजर आता है मुझे कब्रिस्तान में जाओ, ये कौन है जी, ये फलाए अच्छो, ये साथ कौन है, ये फलाए ओ, लेकिन सुभान अल्लाह बाद शहनशाह ऐसे होते हैं कि दुनिया भी शहनशाह होते हैं लेकिन जब मरते हैं तो कब्र के अंदर ही वो शहनशाह ही होते हैं, ऐसे बादशाह जो सारी सारी रात ही बात, औरंगजेब, हजरत औरंगजेब आलमगीर इतना बड़ा बादशाह था, देखें फकीर था, हाथ से गुलाम रखता था, सारी सारी रात तहज्जुद पढ़ता था, उन्हीं के खानदान में एक होते हजरत मुजीब सनी के जो खुलफों में से हैं, उनकी कब्र की मैं हजरत जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर मकबरा है उनका, बादशाह मुगल बादशाह था, जो हजरत मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह का खलीफा उसका क्या मुकाम होगा मुझे बताएं। मैंने कहा नहीं मैंने ऊपर कब्र तक नहीं जाना, मैंने इसकी तह तक जाना है, आज असल देखना है उस बादशाह को है कहाँ, तो वो क्या है कि ऊपर तो उन्होंने सिर्फ वो रखा बनाया नीचे, उसके बाद या जिस गया फिर मैं तो आपको पता है जुनूनी आदमी मैं तो करता हूँ फिर काम अगर नहीं, ये तो नक्शबंदी शेख है, इसकी कब्र में जाकर मैंने दुआ मांगनी है, तो हजरत मुजद्दद खलीफा है मैं कह जाना है, मैंने आदमी तलाश किए वहाँ, बड़ा मुश्किल है वो किला है लाहौर का किला, काबू कर लिए मैंने आदमी काबू किए करके, दिन तो मेरा लगा पूरा मैं जो कुछ कर करा के मैंने कहा चल, उसने जहाँ डर तो बहुत लगा भाई, वो है ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है, उन ज़माने में बादशाहों ने ज़मीन के अंदर तहखाने बनाए हुए थे और सुरंगें थी जो दिल्ली से जाके लाहौर तक मिलती थी, वो जंगल वगैरह लड़ते थे ना तो उनके ऐसे इंतज़ाम थे, तो जहाँ उसने दरवाज़ा खोला बिल्कुल अंधेरा, वो सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी, कहते चले नहीं फिर आप, मैं कही यार यहाँ जाना है, कहते अभी तो और है आप देखें नीचे कितना जाना है आपने, असल कब्र तो हजरत जहांगीर रहमतुल्लाह की तो वहाँ नजर आएगी आपको, साथ में नूरजहाँ भी नजर आएगी आपको, जो उसकी बेगम थी वो लेटी आपको नजर आएंगी, मैं चलो चलता हूँ, तो कोई लाइट का इंतजाम नहीं था, उसने जो टॉर्च निकाली, अब चलते हैं डरते जाओ नीचे नीचे जनाओ, चलती जा रही सीढ़ियों, मैं भी चलता जा रहा हूँ देरा घूप, अल्लाह जाते जाते मुड़ते और नीचे और नीचे और नहीं पता कितनी नीचे हम चले गए, अल्लाह मालिक, उसके बाद जाके जनाब एकदम देखा तो छोटा सा कमरा है, वहाँ कमर नजर आ गई, सुभान अल्लाह क्या नूर था, बादशाह ही बादशाह होता है, सुभान अल्लाह क्या था बादशाह था, तुमने जमीन पर भी स्वतंत्र किया तो कब्रों में स्वतंत्र है, अल्लाह एक छोटा सा वहाँ दीजिए सा जल्दा था, पता नहीं क्या था उनकी कब्र पर, बड़ा ठंड अल्हम्दुलिल्लाह सुकून ऐसा जबरदस्त था, कुछ देर मराखबा किया जिसने, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि हजरत मुजद्दद साहब ने फरमाया कि जिस वक्त मैं अल्लाह के हजूर पेश होऊंगा तो अल्लाह कहेगा मेरे लिए क्या लेकर आया, तो मैं जहांगीर का हाथ पकड़ के कहूँगा अल्लाह ताला मैं ये लेकर आया, मैं तुझे लेके जाऊंगा साथ। हिंदुस्तान के मुगल बादशाह और जहांगीर, छोटे मोटे बादशाह आज वाले थोड़े बादशाह थे भाई। हाँ तो मैं कहता हूँ ये जब अल्लाह से ताल्लुक हो जाए, ये नहीं हो गरीब और अमीर के चक्कर नहीं चलता। आप अमीर हैं, अमीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नेमत दी है, वो भी ताल्लुक पैदा कर सकता है अल्लाह ताला से, रातों को जगा सकता है, अल्लाह की आवाज़ें सुन सकता है। तो दिल की बात है, तैयारी की बात है। तो फिर वहां से जो धक्का पड़ेगा अगली मंजिल का, हशर, हशर में क्या हाल होगा ये देखें। हाँ इन तीन मंजिल का एक नक्शा देखते हैं, कौन बताते हैं, इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब गरीब बात कही है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला पेश करते हैं। अब हदीस की तरफ आता हूँ, इन तमाम बातों की दलील दे रहा हूँ हदीस से, बात तो वही बनती है, स्टोरी बात वाली बात क्या, ताकि आज जो बात आज तक पहुँच रही है अगर आप मार के ला रहे हैं अपने और यकीन करते हैं कुरान हदीस पे, तो आज के बाद इस अमल को मत छोड़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस अमल को अख्तियार कर लिया तो गारंटी दे रहे हैं इमाम अंबिया कि जो तीन मनाजिर मैंने तुझे बताई हैं, तीन मनाजिर, पहली दुनिया की मौत, दूसरी डेस्टिनेशन कब्र, और तीसरी कौन सी हशर, तो मैं तीनों के लिए मैं गारंटी देता हूं, ना वहशत होगी, ना गम होगा, ना फिक्र। फिर बोले कैसा कलू है मुझे बताएं, इंसान को ये मिल जाए आज ही से तैयारी ना शुरू कर दें, करेंगे पक्की। मैं तो नबी बात बता रहा हूं, कौन सी ऐसी चीज है प्यारे नबी हमारे ने हमें बता ही ना गया, ऐसी कि तैसी मुसाफिर होने की, अल्लाह तुम घबराते क्यों, तुम मेरे उम्मती हो, मुझसे तुम्हारा ताल्लुक, किस किस मौत से घबराते तुम, मौत के वक्त अगर फरिश्ते ना उतरे तुझे सजा के ना ले जाए तो मेरा काम किस कब्र से घबराते, कौन सा लड़ा, कौन सा अंधेरा, कौन सा पूछू, कौन सा सवाल जवाब, तुम मेरे उम्मती हो, अगर तुम वहां सुकून के साथ ना लेटो और तेरा कब्र जन्नत का टुकड़ा बन जाए तो तुम मेरा उम्मत ही ना हो। घबराता क्यों है कब्र के उस हशर के मैदान से, उस चीज से क्यों घबराता है। अब हदीस सुनाता हूं आपको, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज भी वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूं। हदीस है, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, क्या आंखें होंगी सुभान अल्लाह सरकार दासों की, कि उन्हें सब बयान ही नहीं की लेकिन इस तरह बयान की है कि मैं उस मंजर को देख रहा हूं। वो कौन सी आंखें हैं, क्या कुछ देख सकती हैं वो मुझे बताएं आप, क्या मुकाम है उन आंखों का। ये तो शबे मराज में देख सकते हैं आप कि नबी बख्शों की आंखों की क्या कीमत थी और क्या हालत थी। बैतुल मुकद्दस से लेके गए जिब्रील अलैहिस्सलाम, पहला दूसरा तीसरा सातवां चलते रहे, अंबिया पीछे होते गए, पूछे होते गए, मुलाकातें होती गईं होती गईं होती गईं, जिब्रील सलाम सरदार फरिश्तों के चलते रहे, ये ना सफर हो है, वो भी चलते रहे, नबी पाक भी चलते रहे, तो सब पीछे होते गए। अब दो आ रहे हैं, हज जिब्रील सलाम कौन आ गए, नबी करीम सलाम दोनों रह गए एक मुकाम पे, दोनों रह गए। अब क्या था, दोनों जब वहां रह गए तो अब एक मुकाम ऐसा आया उससे आगे जाना था, तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बस है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए सुभान अल्लाह मेरी, अल्लाह के नबी सुनाते फिर मैं कहते ये मुंतजर है आपके, तो आगे आपका मामला तो आगे ही बनना है, मैं तो यहां तक ही जा सकता हूं, और इतना इस ये जगह ऐसी है कि एक इंच भी अगर मैं हिल जाऊं, सोत भी हिल जाऊं, तो मेरे सारे चल पल के पल खौक हो जाए मेरे। तो यहाँ एक अजीब बात जो मैं बताता हूँ आपको, ये दरवेश में बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं करा, पसंद आए तो कबूल करना छोड़ देना। वो क्या मुकाम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जहाँ मुकाम नबूवत फेल, कोई नबी वहां पहुंचा, मुकाम रिसालत फेल, कोई रसूल पहुंचा। अब ये आज बता रहे हैं आप जो मेरे दिल में बात है, ये बता रहा हूँ, मुकाम नबूवत फेल, मुकाम रिसालत फेल, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार है मुकाम फरिश्ता फेल, तो नबी पर कौन सा मुकाम था जो उनको वहां ले गया जहां कोई भी ना पहुंच सका। बोले सुभान अल्लाह, बताऊं आपको कौन सा मुकाम था, बताऊं पहले सुभान अल्लाह कहना जरूर, देखिए मोहब्बत की बात था, भाई क्या मुकाम था वो जहां नबी नहीं पहुंच सका, ना रसूल पहुंच सका, आप में सारी सिफात मौजूद थी, यहां जिब्रील नहीं पहुंच सके, पूरी कायनात खत्म हो गई वहां। वाहिद पहुंचे तो कौन पहुंचे? अल्लाह के नबी पहुंचे। तो आपका क्या मुकाम हुआ जो आपको वहां तक ले गया? वो मुकाम बहुत अजीब था। वो कौन सा मुकाम था? मुकाम महबूबियत था। अल्लाह के हबीब थे। नबी तो आए, रसूल तो आए, लेकिन हबीब कोई नहीं आया था। ये मुकाम था आपका कि वो आपको इतने दर्जे पे ले गया, सिर्फ ये आप ही के पास था। तो उस आंखों की क्या शान मेरे भाइयों, अगर आप सोचें क्या शान होगी। अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं कि मैं देख अपनी आंखों से देख रहा हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अब ये सुने सारे मुकाम जो मैंने आपको बताया, अपनी आंखों से देख रहा हूं कि कुछ लोग हशर में अपनी कब्रों से, जब हशर कब्रों से निकलेंगे, लोग अपनी कब्रों से मिट्टी झाड़ते हुए आराम से उठ रहे हैं। मिट्टी झाड़ते हुए बांध मिट्टी झाड़ते लग जाती इंसान को, यानी बहुत सहूलत के साथ उस जगह से जो कब्र है तीसरी जगह से ट्रांसफर हो रहे हैं, पीछे से लेकर आगे तक हल्की सी मिक्की मिट्टी झाड़ते हुए ऊपर उठ रहे हैं, निकल रहे हैं कब्रों से, और कब्रों से उठ रहे हैं और कह रहे हैं, इतने मस्त होंगे अंदाजा लगाए, कह रहे हैं शुक्र है मौला तेरी तारीफें हैं, सब तारीफें तेरी ही हैं। वहां कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं मौला सब तारीफें तेरी हैं कि जिसने तूने हमें गम और फिक्र से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तीसरे मंजिल जाके लफ्ज कह रहे हैं। और फिर सुने कि ये वो लोग हैं जिनको ना मौत में वहशत आई, ना कब्र में वहशत आई, और ना वो हश्र में इनको वहशत गम है। ला खौफ़ अलैहिम यासरून, ये वो लोग हैं। अल्लाह के नबी क्या है? एक खिताब दिया अल्लाह के नबी ने, बड़ा प्यारा। ये कौन है? उस खिताब का पहले मैं तर्जमा कर देता हूँ आपसे, फिर खिताब की बात करूँ। कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के जिक्र को कसरत करते करते ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले बन गए। दूध बेचते बेचते ये दूध वाला बन गया है, ये पान बेचते बेचते। मैंने एक साहब से पूछा, बड़े जेंटलमैन, बड़े हाई क्लास एजुकेशन था उनका, इंडिया से आते। मैं हजरत आपका नाम जी? मेरा नाम मोहम्मद यकीम, पान वाला। मैंने पान वाला भाई हस्तक नहीं सुनता, मैं मजाक भी नहीं कर सकते, ये पीएचडी करने आए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छी खानका आए थे जिक्र सीखने। मैं कहा मजाक करता हूँ तो मामला बड़ा अजीब हो जाएगा, मैं शायद मैं धोखा खाए। मैं कहा मैं समझे आपका इसमें गिरामी क्या है, ये मेरा फला फला पान वाला तो समझिए। हंस कहने की हम पान वाला आप समझे ना, क्यों कि हमारे पुष्ट दस बम्बे से हमारा ताल्लुक है, हम पान बेचते थे। तो पता ही चला कि जिस चीज में आदमी महव हो जाए, बोले सुभान अल्लाह, जिस चीज में आदमी मशगूल हो जाए, जिसको अपनी जिंदगी का वतीरा बना ले, तो वो पुश्तों तक उस नाम से पहचाना जाता है। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जो अल्लाह के जाकिर ऐसे हो जाएंगे कि जिसने अपनी जिंदगी को जिक्र में गम कर दिया, तो वो उनका लकब ये हो जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाले। तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वाले जो हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिक्र में शामिल फना किया होगा, आज उनको ये मकाम होगा सुभान अल्लाह कि ना मौत पे रोक तो रो रहे हैं उनके लिए, और वो फरिश्तों में हंस रहे होंगे अपनी खबरों को देख रहे हैं। लोग तो कब्रों गड्ढों में देख रहे होंगे इसमें क्या कुछ होगा, वो कब्र के गड्ढों की जन्नत की क्यारी बन चुकी है जिसमें जाके दरवाजे खुल चुके होंगे। लोग तो हशर परेशान हो रहे होंगे, आंखें खुल चुकी होंगी, और ये हंसते हुए मिट्टी झाड़ते उठ रहे होंगे, तारीफें करेंगे कि शुक्र है तूने फारिग किया, हम तो चले जन्नत में भाई। दोस्तों अल्लाह का जिक्र कर लो, अल्लाह का जिक्र करो। औरतें मर्द सोए सुन रहे हैं, हम इतने ना तहज्जुद गुजार बन सकते हैं, ना हम इतनी बड़ी बड़ी ऊंची इबादत कर सकते हैं। दो काम हम कर लें अपनी जिंदगी में, बस बहुत थोड़ा वक्त है। एक ये कि बताई हुई अल्लाह की बातों में जिससे अल्लाह के नबी ने मना किया कि ये मत करो, बस इतना कर लें। रुक जाया करें जब ऐसी कोई बात हो जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया मत करो, क्यों कि हम नहीं जानते कि उसमें कितने नुकसान है हमारे, कितनी बर्बादी है हमारी आखिरत तक, हशर तक। रुक जाओ, कहते थोड़ा सा देर के लिए टेस्ट है, मैं ये काम नहीं करता, मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरा काम ये कि अल्लाह के जिक्र को मुस्तैदी के साथ पकड़ लो। नहीं कर सकते तहज्जुद, नहीं कर सकते इतने हम कुरान खत्म, नहीं कर सकते इतनी इबादत। बीमार भी तो होते हैं लोग, फारिज भी तो हो जाते हैं लोगों, चीजें भी तो हो जाती हैं, तो क्या उन्होंने जन्नत में नहीं जाता? अल्लाह ने छूट दी है, लेकिन जिक्र एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज है कि मरते मरते भी मौत आ जाएगी तो उसका जबान जाकिर होती है, उसका दिल जाकिर होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। करेंगे जिक्र? मुझे दावत देता हूं आपको मैं दोस्तों, किस तरह देख घेर के हदीस देखे आपने सुनी है, हर मुकाम पे कामयाब कौन है? अल्लाह का